यहाँ तक लिखा है कि जो कि जिसके घर में गीता नहीं होती वो घर शमशान घाट है।
वैष्णवीय तंत्र में इस प्रकार वर्णन है, अग्नि पुराण में इस प्रकार वर्णन है, अग्नि पुराण के गीता महात्मा में। क्यों? क्योंकि गीता में वो ज्ञान है जो सारे वेदों में है, और वो भी ज्ञान है जो सारे वेदों में नहीं है। या यूं कहिए कि जो वेदों में समझना मुश्किल है उसी को गीता में बहुत ही सरल रूप से समझा चुके हैं। बल्कि वेदों में और अन्य शास्त्रों में, उपनिषदों में, ऐसा उस ज्ञान को समझने में कई संशय आते हैं। मुश्किल है, बहुत कठिन है, जटिल है, उसकी संस्कृत समझना मुश्किल है। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता को उपदेश दिया अर्जुन को कि अर्जुन जो भी तुम्हारे संशय है सबका निवारण गीता पढ़ने से हो जाएगा। चाहे आध्यात्मिक समस्याएं हैं, चाहे भौतिक समस्याएं, सबका सोल्यूशन गीता में है। सो कई बड़े बड़े जो नास्तिक लोग भी थे वो भी गीता पढ़ते थे, और उनको लगता था कि गीता के अंदर हमारे सारे समस्याओं का हल है। इस उदाहरण के लिए महात्मा गांधी भी गीता पढ़ते थे। इनके आई थिंक पीछे इन्होंने चेंज कर दिया, हटा दिया इन्होंने। महात्मा गांधी भी गीता पढ़ते थे। सोना ने भी कहा जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो मैं गीता पढ़ता हूं, और से मुझे जीवन का समस्या का हल मिल जाता है। सो गीता में केवल आध्यात्मिक समस्याओं का हल नहीं है बल्कि सारी समस्याओं का हल है। वो बात है कि हमारे पास आंखें नहीं है देखने के लिए, गीता में वो हल है। वो बात अलग हो सकती है, वो बात अलग हो सकती है कि लोग गीता को पढ़ के कहें देखो इसमें क्या दिया, ज्यादा कुछ नहीं दिया। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम गीता पढ़ेंगे तो गीता में, जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं गीता में भगवान के विषय के बारे में, वो तो है ही। गीता में भक्ति के विषय के बारे में, वो भी है। गीता में यह भी लिखा है कि ब्रह्मांड क्या है, कॉस्मोलॉजी। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब कि ब्रह्मांड बना कैसे, उसके बारे में भी पूरा गीता में ज्ञान है। गीता में यह भी ज्ञान है कि आहार किस प्रकार का करना है और कैसे करना है। पूरा आयुर्वेद है गीता के 16वें अध्याय या आई थिंक 13वें 14वें 15वें 16वें। उसमें कृष्ण बता रहे खाना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, वो सब भी बातें हैं इसमें। आहार विहार सब भौतिक चीजों के बारे में भी चर्चा है। नहीं, गीता में या लॉ भी है, गीता में लॉ भी है। गीता लॉ बुक है नहीं, जैसे हमारी कंट्री के लिए लॉ बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का, उसी प्रकार इस संसार की लॉ बुक है गीता। संसार गीता के नियमों से चल रहा है। हमारा भारत देश इस हमारे मानव के बनाए हुए लॉस पे चल रहा है, नियमों पे, मगर संसार और संसार की चीजें भगवान के बनाए हुए नियमों पे चल रही है। जिसने संसार बनाया है, किसने बनाया? कृष्ण भगवान ने, भगवान कृष्ण है जिसने बनाया है। वो ही बता रहे हैं कि ये संसार कैसे चलेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो वो चीज हमें सीखनी पड़ेगी, वो चीज गीता सिखा रही है। सिंपल सिंपल सी बात है। तो कृष्णा गीता के 15वें अध्याय में ये समझा रहे अर्जुन, अर्जुन जो भी मैं बता रहा हूं वो कोई अंधविश्वास नहीं है। धर्म मतलब अंधविश्वास नहीं होता, वो हम समझते हैं, वो आजकल के लोगों की धारणा है कि धर्म मतलब अंधविश्वास, मगर धर्म मतलब अंधविश्वास नहीं है। कृष्णा क्या कह रहे हैं, धर्म मतलब क्या है? कृष्णा कह रहे हैं 9वें अध्याय में कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ही तदुत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण समझा रहे हैं कि धर्म क्या है, धर्म वो है जो सारी विद्याओं की राजा है, विद्या है। कोई मनोकल्पना नहीं है कि हमारे मन से ऐसा चल रहा है, नहीं, धर्म मतलब विद्या होती है जो सीखनी पड़ती है। इसलिए श्वेता शिखर उपनिषद लिख रही है कि तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, भागवतम के भी कह रही है कि इसलिए गुरु के पास जाओ, क्या करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए। और शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणे उपशमाश्रयम, ऐसे ऐसा गुरु लो जो कि शब्द मतलब जिसको ज्ञान है, किसी का ज्ञान, गीता का ज्ञान, जो अंधविश्वासी नहीं है। हम समाज में अंधविश्वास नहीं फैलाने आए, वो तो पंडित लोग फैला रहे हैं कि देखो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, अभी मैं बात ही कर रहा था किसी से, तो कई लोग कहते हैं देखो हमारे घर में दोष लगा हुआ है। कई लोग, वैसे एक नहीं, राजपुरा में तो पितृ दोष हर एक को लगा हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है, हर दूसरे घर में पितृ दोष लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, पितृ राजपुरा से ही परेशान है, पता नहीं ऐसा क्यों है। जिससे मिलो उसके घर में पितृ दोष, समझ नहीं आता। पितृ दोष, अब ये सारी चीजें हैं, दोष लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, मगर क्या है इसका, क्या हल है इसका? हल है हम लोग कुछ कर सकते हैं, हरे कृष्ण, हम लोग इसके हल में कुछ ना कुछ जादू टोना टोटका ये कर सकते हैं, मगर ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं इसका कोई हल नहीं है। क्योंकि इस संसार में अगर कोई दोष लगा है, अगर आप उसका कोई संसारी हल निकालोगे तो उसमें एक और दोष होगा। एक आदमी एक भार लेके जा रहा था इस कंधे पे उठा के, वो थक गया, तो उसके दोस्त ने कहा क्या करो, ये उठा के इस कंधे पे रख दो, थोड़ी थकावट कम हो जाएगी। मगर फिर से वो भार तो है शरीर पे ही, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये न्याय है, न्याय, न्याय शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है, एक न्याय होता है। तो इस संसार के हल ऐसे ही हैं, आप कोई भी हल लोगे उसके अंदर कोई ना कोई दोष जुड़ा हुआ है। इस संसार के सारे सुख ऐसे ही हैं, कोई भी सुख लोगे उसके साथ दुख आपको फ्री में मिलेगा, समझे? लोगों को फ्री में लेने की आदत है, नहीं तो सुख के साथ दुख फ्री है, ये कृष्ण की, कृष्ण का बिजनेस है, उनके प्रोडक्ट्स है, नहीं उन्होंने यहां पे ऐसे रखा है। और आप देखो ऐसे ही है, नहीं, हर सुख के साथ दुख है। आप सॉफ्ट, आप मखमल बेड पे सो गए तो उसके साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस फ्री है। स्पॉन्डिलाइटिस पता है आप लोगों को, गले में पीठ में दर्द हो जाता है, नहीं, फिर डॉक्टर कहते हैं देखो सख्त बेड पे सो, वो मखमल मत इस्तेमाल करो, दुख है उसके साथ। इस संसार में कुछ भी आप सुख लोगे उसके साथ दुख है, 100% दुख है। कोई ऐसा सुख नहीं है संसार में जो कि शुद्ध सुख है, सब में मिलावट है। तो इसीलिए कोई भी दोष है संसार का, उसका कोई भी हल होगा, उसमें कोई ना कोई फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो तरीका क्या है? कृष्णा कह रहे हैं राज विद्या, विद्या लो, धर्म मतलब विद्या, धर्म सीखो। धर्म अगर सीखोगे तो धर्म से जो ज्ञान आएगा, जब ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखोगे तो दिखाई देने लगेगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहां पे केवल सुख है, हमें दुख दिखाई नहीं दे रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, नहीं। मगर जब हम गीता की आंखों से देखेंगे तो हमें समझ आएगा, नहीं नहीं एक्चुअली उसके साथ तो दुख भी आ रहा है, प्रॉब्लम है। मैं पितृदोष हटाने के लिए कोई कोई सॉल्यूशन, कोई हल ढूंढूंगा, एक और आ जाएगा उससे समस्या। ये मत सोचो कि उस समस्या का 100% कोई हल नहीं है इस संसार में, मगर अगर धर्म का पालन करेंगे तो उस ज्ञान से हम सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, राम भगवान के एक तीर से। कई निशाने पड़ते थे। राम भगवान ने जब सुग्रीव ने कहा था वो सात पेड़ थे उसको गिराना था, क्या तार के पेड़ थे, सुग्रीव ने कहा था अगर आप सात पेड़ थे, अगर इस सातों पेड़ को आप तीर से गिरा देंगे राम भगवान तो मैं समझ लूंगा कि आप बहुत शक्तिशाली हो, बाली को मार सकते हैं। सो भगवान ने कहा कि उसमें क्या है, उन्होंने तीर चलाया, सातों पेड़ एक ही तीर से गिर गए और फिर वो तीर समुद्र में गया और समुद्र में कई असुर थे उनको मारा और फिर पताल लोक में गया और पताल लोक में भी असुर थे उनको भी मारा और फिर दोबारा से भगवान के पास आ गया। तो एक तीर से कई निशाने थे। ऐसे ही गीता का जो ज्ञान है, गीता का जो धर्म है, धर्म मतलब ज्ञान है, उसको अपनाने से हम एक ज्ञान से सारी समस्या को हल ले सकते हैं। ये गीता है, राज विद्या, इसलिए भगवान कह रहे विद्याओं की राजा है। ये अंधविश्वास नहीं है, इसको समझना होता है। एक टीचर के पास जाकर जो कि गीता जानता है, शब्दे परे च निष्णातम, जो कि सिर्फ जानता नहीं है गीता, जिसने अपने जीवन में उसको लगाया है, उसका पालन कर रहा है, भ्रमणि उपशमाश्रयम, जिसके जीवन जिसके मन में जिसके हृदय में गीता का ज्ञान है, जिसकी इंद्रियों में वैराग्य है और जिसकी आत्मा में भगवान की सेवा करने का उत्साह है, जब उससे गीता सुनोगे तब समझ आने लगेगी। वो कृष्ण क्या कह रहे हैं, वरना हम पढ़ेंगे कुछ और निकालेंगे, वरना आप पढ़ोगे गीता आपको लगेगा गीता गीता क्या है, गीता पढ़ के मुझे कुछ लोग गीता पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि उनके जो क्या कहते हैं उसको अशुभ जो ग्रह है वो शांत हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रह दोष होता है। दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पे कई लोग गीता पारायण करते हैं, सारे 18 अध्याय पढ़ते हैं गीता का हर एकादशी को। उनसे पूछो क्यों पढ़ते हो, कहते हैं देखो भी ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं, उनको गीता में यही नजर आ रहा है बस। सिर्फ कुछ लोग गीता पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ देखो अच्छा है गीता पढ़ना, अच्छा है, अच्छा काम है। मगर कुछ विद्वान लोग गीता पढ़ते हैं समझने के लिए कि ओ गीता में वो ज्ञान है जो कहीं नहीं है। अगर आप ध्यान से गीता पढ़ोगे तो आप कृष्ण भगवान के फैन बन जाओगे डेली में। एक्चुअली कृष्णा सिर्फ भगवान, कृष्णा सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, सबसे बुद्धिमान है, नहीं वो भगवान है, उन्होंने सब कुछ बोला हुआ है, सब सारी दुनिया को एनालाइज करके, सारी साइकोलॉजी एनालाइज करके, सब कुछ क्रक्स में जो बिल्कुल जरूरत है उसके बारे में चर्चा की हुई है। अगर आपको जानना है कि मन कैसे काम करता है, गीता पढ़ो, गीता में लिखा है 14वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मन कैसे काम करता है, कैसे कोई व्यक्ति क्या सोचता है। इसलिए जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो मैं मेरी ड्यूटी वहां पे लगी थी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, तो लगती है जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब MBBS कंप्लीट हो जाती है तो एक महीना हर डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगती है, मेडिसिन में, गाइनी में, सर्जरी में। तो एक महीना मेरी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगी, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक जो भी है। तो वहां पे हम पेशेंट को देखते थे, पेशेंट आते थे पागल, आधे पागल, सो वो लोग कहते थे देखो हमें ये बीमारी है, हमें बीमारी है, तो हम उनको दवाई देते थे, मगर दवाई क्या, साइकेट्रिक पेशेंट की दवाई क्या है, एक ही दवाई है, सुला दो, कोई दवाई नहीं है हमारे पास। मगर हम उसको ये नहीं बताते कोई दवाई नहीं है, दो तीन दवाई होती है बस, एक होती डाइजीपाम, वो पहले थी, अब है उसका एक हायर जनरेशन नाइट्राजीपाम, वो क्या है, वो सुलाने वाली दवाई है बस, आपको सुला देगी। दूसरी है आपकी एविल तो पता होगा आपको, एंटी एलर्जिक, या एमिट्रिप्टेलिन है, उससे क्या होगा आपका मन सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, नहीं तो पागल बहुत सोचता है ना, उस दवाई से सोचने की शक्ति कम कर देंगे, सोच नहीं पाएगा, सोता रहेगा, तो लोगों को लगेगा ठीक हो गया, मगर ठीक हुआ नहीं, ठीक हुआ उसका पागलपन ठीक नहीं किया हमने। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि संसार ही ऐसा है, यहाँ की सारी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आप हल ढूंढोगे वो ऐसे ये डाइजी पाम की तरह और एमिट्रिप्टिलिन की तरह। बस थोड़ा सा आप, बहुत दुख हो रहा है, बहुत समस्या आ रही है, थोड़ा सा को हल से थोड़ी सी शांति मिलेगी, हाँ अच्छा है बस। मगर जो समस्याओं की जड़ है वो खत्म नहीं हुई, वो खत्म नहीं हुई। फिर जब मैंने गीता पढ़ी तब मुझे समझ आया, वो लो ये जो आधे पागल लोग हैं इनकी, इनका एक ही हल है, दवाई हल नहीं है। ये पागल इसलिए हैं क्योंकि इनके मन में शांति नहीं है, तभी तो मन भागे जा रहा है 24 घंटे। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, शांति कैसे मिलेगी? गीता क्या कह रही है? गीता कह रही है एक ही तरीके से शांति मिल सकती है, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक भोक्ताराम, और 29वां श्लोक भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात माम शांति मृच्छति। आपको शांति मिल ही नहीं सकती अगर आपने ये नहीं समझा तो। क्या नहीं समझा? कि भगवान भोक्ता है, भगवान को आनंद देना है, खुद आनंद लेने की कोशिश करोगे आनंद कभी भी नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है। हम लोग अभी वहां गए थे ऊना, तो आते वक्त वो आया था भाकड़ा नंगल डैम, दो डैम है, एक नहीं है, हमें लगता है एक ही है मगर हमने देखा भाकड़ा डैम और नंगल डैम। तो वो आया था तो हम वहां से जा रहे थे, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर रुक के हमने देखा क्या है वो। तो उसके भाकड़ा नंगल डैम के आगे एक और है टूरिस्ट स्पॉट, उसको कहते हैं नैना देवी, नैना देवी पता है। और उसके थोड़ी और आगे जाओगे कहीं और रूट से तो चिंतपूर्णी आ जाएगा। तो यहाँ पे कई लोग आ रहे थे अपने घूमने घामने, टूरिस्ट आते हैं। तो क्या होता है, ये सारे लोग कभी इधर घूमने जाते हैं कभी उधर घूमने जाते हैं, ये क्या क्यों घूमने जा रहे हैं, किसकी तलाश में? आनंद शांति और सुख, मगर इनको मिलेगा नहीं, इसलिए भागते रहते हैं, कभी यहां भागना है कभी वहां भागना है कभी वहां भागना है, वो कुछ नहीं मिल रहा, बोर हो गए। हम उसे अखबार में पढ़ रहे थे, गोवा में एक हस्बैंड वाइफ थे, वो पूरे संसार घूम के आए, यूरोप अमेरिका चाइना व्हाटएवर जो भी जगह सब घूम के आ गए, गोवा में आकर सुसाइड कर ली उन्होंने। और उन्होंने लिख के गए हमने सारा संसार घूम लिया, हम इतने बोर हो गए, अब कोई घूमने की जगह नहीं है, अब इस बोरियत को हटाने का कोई तरीका नहीं है, मर रहे हैं। और ऐसे ही होता है, जब मैं अपने घर में था तो अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब आज से 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 16 साल पहले, तो अपने फादर मदर मदर फादर के साथ मैं अमेरिका गया, यूरोप गया, सिंगापुर, चाइना नहीं गया, चाइना तो घटिया जगह, ऐसी घटिया लगती थी, और सब जगह घूम लिया। और फिर लगा कि कुछ रखा ही नहीं, बोर हो गए, कुछ भी नहीं रखा। तब जब मैं वहां पे घूम रहा था अमेरिका में, तो वहां पे गीता पढ़ता था मैं, जब गीता पढ़ रहा था और फिर जब वहां के लोगों को देख रहा था, तो मुझे लगता है तो पागल है, ये पागल है। अगर गीता के ज्ञान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पागल तो पागल है ही, साधारण आदमी भी पागल है। इसलिए भागवतम कह रही है नूनम प्रमत्तः, ये ऋषभ देव जी की एनालिसिस है भागवतम में, भरत महाराज कह रहे नूनम प्रमत्तः, सब पागल है। पहले जब मैंने पढ़ा था मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यार बेकार की बातें, शास्त्र गलत है, कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में कि कौन सा श्लोक है, या कृष्ण कह रहे हैं कि सब मूढ़ा है, सब बेवकूफ है गीता में, या अंबाजा नदी वाला अच्छी पागल का है, कृष्णा ने पागल नहीं कहा मगर मूढ़ा का, मूढ़ा मतलब मूढ़ा पागल ही कह सकते हैं। तो मैं जब मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा था तो मैं सोचता था कि कृष्णा क्यों कह रहे हैं पागल है, हमें तो जो सब नॉर्मल लग रहे हैं, नहीं सब सही तो लग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अपना ठीक से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आज समझ आता है मुझे एक्चुअली रैली में पागल है, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा, जो भगवान को सुख नहीं दे रहा उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, नहीं। और जो अपने आप को सुख, जो ये नहीं जानता कि अपने आप को सुख कैसे देना है, वो क्या है, वो पागल ही तो है। जिसको ये ही नहीं पता कि अपने आप को सुख कैसे देना है, जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, उसको पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जब भगवान ने बोल दिया कि जब तक तुम मेरी सेवा नहीं करोगे, यो माम ने क्या 15 अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू, ओ या ये रहा 15 अध्याय का आखिरी श्लोक है, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो जानता है बिना किसी संशय के कि मैं भगवान हूं, कृष्णा भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, दुर्गा देवी भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है, समझे, कृष्णा भगवान है, ये अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर नहीं फिट हो रहा तो हमारे मंदिर आ जाओ, हम आपको ऐसी दवाई देंगे कि आपके माइंड में फिट हो जाएगा। मेरे पास दवाई ऐसी जिससे आप सब कुछ भूल जाओगे और फिर हम आपके दिमाग में डाल देंगे कृष्णा भगवान है। अगर भूल सकते हो तो भूल जाओ, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सुना है, सब कुछ गलत सुन लिया, गलत पढ़ लिया, पढ़ा तो है ही नहीं, चलो किसी ने पढ़ता तो कोई है ही नहीं है, सुनते हैं बस, कभी उसने बोल दिया, कभी इसने बोल दिया, कभी इसने बोल दिया। कई लोग अब राजपुरा में कई लोग हर महीने हरिद्वार जाते हैं, जाते नहीं जाते, हर अमावस्या पे वहां चले जाते हैं, कौन सी जगह है वो, पेवा, पेवा पेवा पता ना कुरुक्षेत्र में, हर महीने कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग वो कौन सी जगह है, मनीमेश, मनीमेश, मनीमेश पता है आपको, वहां जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, सारे देवी देवता जो हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, ये सारे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, ये वैष्णव हैं, शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, और राम की उपासना करते हैं, विष्णु की उपासना करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, रामा रामा रमेति मनो रामय रमो रमे विष्णु सहस्रनाम है, राम 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 का जप करते हैं। राम भगवान ने वैसे रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की है, पता है रामेश्वरम, तो वो क्यों की है, क्या शिव जी भगवान है, नहीं, पद्म पुराण के उत्तरखंड के 235वें अध्याय में आता है कि शिव जी कह रहे पार्वती, जो मैंने राम की पूजा की है रामेश्वरम में, वो मैंने असुरों को मोहित करने के लिए की है, जिनको ज्ञान नहीं होगा वो मोहित हो जाएंगे, वो सोचेंगे मैं भगवान हूं, मगर राम मेरे उपास्य हैं, और इसीलिए राम भगवान ने मेरी पूजा इसलिए की, ये दिखाने के लिए कि भगवान के हृदय में भक्त है और भक्त के हृदय में भगवान है, नहीं। सो अगर मान लीजिए कोई पुत्र बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, तो आपको पता है तो कभी कभी फंक्शंस में उसके माता पिता को बुलाते कि उसको माला पहनाओ, बुलाते नहीं है अपने बेटे को, तो वहां के माता पिता ही उसको माला पहनाते। सो अगर राम भगवान ने शिव जी की पूजा कर दी, मतलब नहीं शिव जी भगवान बन गए, शिव जी खुद कह रहे हैं जब राम भगवान पूजा कर रहे थे मेरी रामेश्वरम में, स्कंद पुराण में कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती जब राम भगवान मेरी पूजा कर रहे थे तो मैं वहां था ही नहीं, क्योंकि मैं उनसे पूजा स्वीकार नहीं कर सकता, वो तो मेरे आराध्य हैं। इसीलिए रामेश्वरम का मतलब ये नहीं है, रामेश्वरम शिव जी ने कहा इसलिए पार्वती, रामेश्वरम का मतलब क्या है, लोग समझते हैं कि रामेश्वरम का मतलब है कि जो राम के ईश्वर हैं, मगर ऐसा नहीं है, रामेश्वरम का मतलब है कि राम जिसके ईश्वर हैं वो मैं हूं शिव। तो शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, भगवान एक है, भगवान कृष्ण है, सिंपल, सारे शास्त्रों में केवल कृष्ण को ही भगवान बोला है। सो अगर आपको ये नहीं पता होगा भगवान कौन है, तो भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम, तो कैसे शांति मिलेगी, हमें पता ही नहीं भगवान कौन है तो शांति कैसे मिल सकती है, नहीं मिल सकती। तो इसलिए गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि देखो शांति चाहिए तो ये समझो भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम, भगवान एक है, हजार नहीं है, कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, कुछ लोगों का सिद्धांत ये होता है, भारत में भी ऐसा है, बुद्धिस्ट समझते हो, बुद्धिस्ट और जैन फिलोसफी, वो कहते हैं भगवान नहीं है। ठीक है क्या ना? ठीक नहीं है। नहीं, भगवान नहीं है तो संसार चल कैसे रहे? कृष्णा खुद कह रहे हैं अपरस्पर असंभूतम किम अन्यत काम अहितुकम। अर्जुन, ये तो तर्क ही नहीं है कहना कि भगवान नहीं है, असंभव है। क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो संसार, अगर सृष्टि है तो सृष्टि करता है, समझे? अगर सृष्टि करता है तो हमारा कुछ कर्तव्य उसके प्रति, और हम उस कर्तव्य को अनदेखा नहीं कर सकते, और हमने उस कर्तव्य को अनदेखा किया तो वो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मुझसे कोई आज पूछ रहे थे कि देखो शराब पीना क्यों पाप है? नहीं, यहाँ पे पंजाब में तो सभी लोग शराब पीते हैं, औरतें भी शराब पीती हैं या पंजाब में पीते हैं। सो लोग कहते हैं कि शराब पीना क्यों पाप है, या सिगरेट भी पीते हैं। शराब पीने में क्या है? हम ही तो शराब पी रहे, किसी का बुरा थोड़े ना कर रहे हैं। घर में बैठ के अपने आराम से शराब पी रहे हैं, ड्राइंग रूम में हमने ना किसी को बुरा बोला ना भला बोला, हमें क्या, हम अपना पी रहे हैं। शराब और सिगरेट पीने में कोई पाप नहीं है, मगर क्या तर्क ठीक है? ये तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तर्क से अगर आप धर्म बनाओगे तो कुछ भी बना सकते हो। धर्म तर्क से कुछ भी धर्म बन सकता है। तर्क क्या कहेगा? तर्क कहेगा कि देखो सब आत्मा है। नहीं, आप सब आत्मा हो, नहीं हो, शरीर नहीं हो। आत्मा कभी मरती नहीं और कभी जन्म नहीं लेती, नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। तो मेरा तर्क क्या कहेगा? देखो आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए सबको गोली से मार दो। जब कोर्ट में जाएंगे तो जज कहेगा तुमने खून किया है। अरे आत्मा कभी नहीं मरती, आपने पढ़ी नहीं गीता? ये तर्क ठीक है? ये तर्क बिल्कुल नॉनसेंस है, बिल्कुल बेकार तर्क है। सो धर्म तर्क से नहीं बनता, समझे? धर्म कौन बनाएगा? जो धर्म बनाने वाला है। हमें समझ नहीं आएगा तर्क से धर्म क्या होता है। अगर धर्म से तर्क से धर्म बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं अहिंसो परमो धर्मा, कहते नहीं धर्म क्या अहिंसा, ये ठीक है? आपको कोई मरने आएगा तो क्या करोगे? मर जाओगे? नहीं, वहां पे ये फेल हो गया, ये धर्म फेल हो गया। अहिंसो परमो धर्मा, अहिंसा वहां पे कैसे करोगे? आपको कोई मारेगा, मरेंगे थोड़े ना। वहां पे अहिंसा नहीं चलती, वहां पे जो मारने हैं शास्त्रों में लिखा है उसको भी आप अपनी रक्षा के लिए उसको मार सकते हो। अगर राजा अहिंसा को परम धर्म मान के अहिंसा का पालन करने लगेगा तो क्या होगा? तो राजा राज्य नहीं कर सकता, रक्षा कैसे करेगा? दुश्मनों को तो मारना ही पड़ेगा। सो मन से अगर धर्म बनाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। धर्म में लिखा है कि शराब पीना पाप है, भगवान ने बोला है। अब भगवान ने क्या सोच के बोला है, क्यों बोला है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। वो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान तो त्रिकालातीत है। वो भूत, भविष्य, वर्तमान, बाहर, अंदर, सबको जानने वाले। हम हर चीज नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान ने बोल दिया ये अधर्म है, तो वो अधर्म है, बस सिंपल सी बात है। इसलिए शराब पीना धर्म मत पियो, और ये हो गए तो नर्क जाना पड़ेगा, बस दैट्स इट। तो इसीलिए भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान कौन है? कृष्णा। उनको, भगवान के ज्ञान को जानना, भगवान का ज्ञान है धर्म, वो ज्ञान गीता है। अगर हम भगवान के ज्ञान को जानेंगे, समझेंगे अच्छे से, भक्तों के साथ रहकर धर्म अधर्म को सीखेंगे ठीक से गीता को पढ़ के, तब हमें हमारे मन को शांति मिल सकती है, वरना कभी नहीं मिलेगी। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, जब हम जानेंगे कि परम ईश्वर कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानाम, जो भी भगवान करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, मगर हमें दिखाई नहीं देता, बस ये हो सकता है। हो सकता है हमें समझ नहीं आ रहा हो कि भगवान हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आ रही हो, दुख आ रहे हो, और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें इतने दुख क्यों आ रहे हैं, प्लीज हटा दो। हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि भगवान ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ, समझे? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे में अज्ञान है। एक बच्चे को मां मारती है तो बच्चे को तो सही नहीं लगता, मगर मां को पता है कि ठीक है, उसको और पिटाई बननी चाहिए। तो ऐसे जीवन में जिसके पास गीता का ज्ञान है, अगर उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसको समझ आ जाता है, उसको दिखाई देने लगता है कि इस समस्या के पीछे भी कुछ भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं। इसलिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं कि समस्या हटाना है। प्रार्थना तो ये करो कि भगवान, अगर मेरे जीवन में कोई दुख और समस्या आ रही है तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस दुख और समस्या के पीछे आपका हाथ देख सकूं, कि आपकी क्या कृपा है, क्या सिखाना चाहते हैं वो मैं देख सकूं। वो गीता का ज्ञान, तब शांति मिलेगी। वरना क्या होगा, एक समस्या आएगी आप उसका हल ढूंढोगे, फिर दूसरी समस्या आएगी उसका हल ढूंढोगे, फिर तीसरी समस्या आएगी उसका हल ढूंढोगे, कभी समस्या खत्म ही नहीं होने वाली। क्या होगा? सो भोक्तारामे तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम। भगवान सब पे कृपा करते हैं, दैट्स ओके, मगर हमारे में कृपा लेने की शक्ति भी होनी चाहिए। वो कृपा लेने की शक्ति गीता पढ़ के आएगी और भगवान का नाम लेके। जब आप गीता पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको इमीडिएटली गीता समझ नहीं आएगी एक बार में, बार बार पढ़ोगे तो शायद समझ आएगी, मगर गीता पढ़ने के साथ साथ हमें भगवान का नाम भी लेना होगा। भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारा मन सूक्ष्म नहीं होगा, एक जगह स्थिर नहीं होगा, नहीं स्थिर नहीं होगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अस्थिर मन में ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अगर एक घड़े में पानी हो, उसे मिट्टी हो, आप घड़े को हिलाओगे तो क्या होगा, मिट्टी पानी में मिल जाएगी, पानी गंदा हो जाएगा। घड़े को रख दोगे तो मिट्टी धीरे धीरे, ऐसे जो अस्थिर मन है उसमें ज्ञान कभी भी नहीं ठहरेगा। आप सुनोगे भूल जाओगे, सुनोगे भूल जाओगे, सुनोगे कर नहीं पाओगे, कहोगे हम कर ही नहीं पा रहे, बहुत अच्छा प्रवचन था मगर हो ही नहीं रहा। हम लोगों को बोलते हैं, देखो सुबह उठ के आप बिना नहाए बिना ब्रश किए सबसे पहले उठ के भगवान का नाम ले लो, नहाने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता कलयुग में, कलयुग में सभी अशुद्ध है, कोई शुद्ध नहीं है। जिस घर में चप्पल चली गई वो घर ही अशुद्ध है पूरा, तो वो अब बाहर सड़क पर थोड़ा रखेंगे चप्पल, खो ही जाएगी। जिस घर में टॉयलेट अटैच्ड है वो अशुद्ध है, अब कहां जाएंगे, जंगल ही नहीं है, सड़क पे करेंगे, हो ही नहीं सकता, तो घर में अटैच्ड होगा ही होगा टॉयलेट। तो आप शुद्धि अशुद्धि नहीं कर सकते कलयुग में, असंभव है। हर स्थान में दोष है, हर काल में दोष है, ये शास्त्रों में लिखा है, हर समय में दोष है, आप कोई समय शुद्ध नहीं है। आप पंचांग में देख सकते हो, पंडित लोग कहते हैं देखो ये अच्छा शुभ समय है, नहीं अभी जो एक महीना नहीं आया था पुरुषोत्तम मास आके चला गया, एक्स्ट्रा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग क्या बोलते हैं, मलमास यहाँ बोलते हैं। इस महीने क्या नहीं, इस महीने विवाह नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं करना चाहिए, समझे, ऐसा बोलते हैं। क्या हो गया, मल मास कहते हैं इसको, अधिक मास भी कहते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, शादी तो करते नहीं इस महीने, नया काम नहीं करते। सो क्या है, ये ज्ञान है अज्ञान है, ये पूरा अज्ञान है। क्योंकि पद्म पुराण में शिव जी कह रहे हैं कि जो ये समझता है कि ये मास अशुद्ध है वो नर जाएगा सीधा, क्योंकि इसको पता नहीं कि ये मास सबसे शुद्ध मास है। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक्चुअली हर नया काम इसी महीने शुरू करना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। अब पता नहीं किसने अफवाह उड़ाई है कि मल मास है, ये पंडितों ने उड़ाई है, समझे, वही मैं समझा रहा हूं, ये मल मास है देखो, इसलिए हमसे पूजा कराओ, पैसे हमें पैसे दो, नहीं ये वो उड़ाते पंडित, वो कहते हैं ये अशुद्ध है ये शुद्ध है, मगर गीता की दृष्टि में कुछ अशुद्ध नहीं है। जो चीज भगवान से जुड़ गया वो सब शुद्ध है, जो चीज भगवान से अलग है वो कितना ही शुद्ध है वो फिर भी अशुद्ध है, नॉनसेंस है वो। तो हर देश में हर काल में दोष है, तो क्या करना है? तो इसलिए आप ये मत सोचो कि नहा के पूजा करेंगे, शुद्ध होके पूजा करेंगे, शुद्ध हो ही नहीं सकते, कैसे पूजा करोगे? तो शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से मत चलो। सुबह उठो, बिना नहाए बिना धोए गीता लो और गीता 10 मिनट पढ़ो, क्योंकि नहाओगे धोगे तो फिर सब बस खत्म हो जाएगा काम। फिर कब, फिर बच्चे चाय न्यूज़पेपर चाय टैटे, बस घर का वो भी जरूरी है, मगर सुबह उठते ही मन फ्रेश है तो गीता पढ़ो और 10 मिनट भगवान का नाम लो। शुरुआत तो यहीं से होगी, एक माला ले लो। माला भी ऐसा नहीं कि शुद्ध होके करेंगे, शुद्धता के चक्कर में लोग करते ही नहीं। तो क्या मतलब, आप शुद्ध होके करना चाहते हैं और शुद्ध होके करते ही नहीं, तो फायदे क्या शुद्धता का? उससे अच्छा तो अशुद्ध होके कर लो। अगर आप गीता पढ़ने में भगवान का नाम लेने में शुद्ध अशुद्ध सोचोगे तो वो पाप है। शुद्ध अशुद्ध कर्म कांड में होता है, कर्म कांड समझते हो, पंडित लोग करते हैं उसमें ठीक है, मगर भक्ति में शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप भक्ति में सोचोगे शुद्ध अशुद्ध, इसका मतलब है हमने भगवान और भगवान की भक्ति को शुद्ध अशुद्ध के अधीन रख दिया, समझे? कहने का मतलब है कि भक्ति भी शुद्ध अशुद्ध के नियमों के अधीन है, वो तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। शास्त्र कह रहे हैं ये सवाय पुंसा परो धर्माय तो भक्ति रधोक्षजे अहि तो क्या प्रतिहत आत्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति अप्रतिहत है, भक्ति सारे नियमों से स्वतंत्र है, भक्ति किसी नियम के अधीन नहीं है, किसी नियम के परतंत्र नहीं है। जिस तरह भगवान स्वतंत्र है उसी प्रकार भगवान की भक्ति स्वतंत्र है। इसलिए ये कहना अभी हम शुद्ध होके जप करेंगे, शुद्ध होके आप गीता पढ़ोगे, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बल्कि अपराधी है। कुछ नहीं होता शुद्ध अशुद्ध, बल्कि जो अशुद्ध है वो भी शुद्ध हो जाएगा। सूरज की रोशनी जिस पे पड़ेगी कीचड़ पे, तो कीचड़ शुद्ध हो जाएगी, सूरज की रोशनी कभी अशुद्ध नहीं होती, समझे? तो हाँ, वेदों को पढ़ने के लिए शुद्ध अशुद्ध है, वेदों को पढ़ने के लिए कुछ दिन है, वेद कुछ दिन नहीं पढ़ सकते, वो बात मानी, मगर गीता क्या है, गीता महाभारत में आती है, इतिहास है, इनको पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं। न नियमता स्मरणे न काला, ये शास्त्र कह रहे हैं। अग्नि पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सारे पुराणों में एक ही चीज लिखी है कि हरि के नाम, हरि की भक्ति, हरि का ज्ञान, हरि का काम, हरि की सेवा, उसके लिए कोई देश स्थान और काल का कोई नियम नहीं होता। जो उनको उसके अधीन रखता है वो भक्ति के प्रति अपराध कर रहा है सीधा। क्या कोई समय भगवान की भक्ति को रोक सकता है? भक्ति अप्रतियत है, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह निरंतर है उस प्रकार भक्ति भी निरंतर है। तो सुबह उठ के आप करो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है मैं शुद्ध हूं, ये विचार ही अशुद्धता है, ये सोचना कि मैं अशुद्ध हूं, यही अशुद्ध विचार है, बस कुछ नहीं है। तो सुबह उठो, पढ़ो, जप करो और फिर अपना दिन जो भी शुरू करना करो, फिर उसके बाद नहाओ धो जो भी करना। बल्कि शास्त्र तो यहाँ शंकराचार्य तो यहां तक लिख रहे हैं कि गीता गंगोत्कम पीतवा, कि गीता की गंगा में नहाओ। तो सुबह उठ के सबसे पहले पानी से स्नान मत करो, सबसे पहले गीता के ज्ञान में उसमें स्नान करो, वो असली स्नान होता है। वो श्लोक भी तो है कि क्या है, नर्मद सिंधु कावेरी जले, सॉरी एक मिनट, भाई अंतर सूची क्या होता है वो, उसको आता है क्या क्या उस श्लोक है, कोई पता तो है आपको, बताओ से। हरे कृष्ण। वेल, एक श्लोक है कि या यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्षम मतलब कृष्णा, जो कृष्ण का स्मरण करता है वो बाहर और अंदर से अपने आप शुद्ध हो जाता है, उसको स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। मगर ऑफ कोर्स हम नहाते इसलिए हैं क्योंकि अब चार दिन ही नहाएंगे तो हमारे दोस्त चार मील दूर बैठेंगे हमसे, वो बात अलग है। मगर भगवान का नाम लेने से शुद्ध हो जाते हैं बस। तो इसलिए पहले गीता के ज्ञान में नहाओ, फिर भगवान के नाम करो उससे शुद्ध होगे, और फिर पानी डालो वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे करोगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी, आदत बनेगी तो फिर बार बार करोगे, बार बार करने से फिर धीरे 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 मन में चीज जाने लगेगी। अभ्यास है ना तू कौन दे वैराग्य ना च दुष्कृताम। अर्जुन ने कहा बहुत मुश्किल है, कृष्णा ने कहा मुझे पता है बहुत मुश्किल है, तो कृष्णा ने कहा कोई हताश होने की वाली बात नहीं है, अभ्यास से कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, थोड़ा सा अभ्यास करना। तो अगर जिस दिन हमें गीता समझ आ जाएगी उस दिन हमें शांति मिल जाएगी, बस सिंपल सी बात है अपने आप, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारा संसार को देखने का ढंग बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। हमें समझ आ जाएगा कि संसार में सुखी नहीं है तो हम भागना बंद कर देंगे इधर उधर। हमें समझ आ जाएगा कि भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों के साथ, भगवान की गीता में सुख है, बस सिंपल सी बात है। और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्याएं आएंगी मगर वो समस्याएं उसी तरह आती हैं। एक भक्त के लिए समस्याएं ऐसी होती हैं जैसे हवा का झोंका आके चला जाता है, मगर जो अज्ञानी है उसके लिए हवा का झोंका भी एक बहुत बड़ा तूफान है। और ये क्या हो गया, बस उसी में उलझ जाता है वो। सो कृपा करके गीता पढ़िए, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत ज्यादा समस्याएं तो समस्या है ही, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि भ्रांतियां बहुत हैं, और उससे बड़ी समस्या है कि लोग आलसी बहुत हैं। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उत्पत्रिता, एक तो मंद बुद्धि कम है, ऊपर से मंद भाग्य है, ऊपर से आलसी है, पढ़ने का मन ही नहीं करता गीता को। और वो हमारी गलती नहीं है इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि हम नहीं पढ़ना चाहते। वो इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि हमें बताया नहीं किसी ने, बचपन से आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि गीता में भी बहुत कुछ है। हमें लगता है कि गीता में बस ये कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये हिंदू की किताब है। ऐसा नहीं है, इसमें विज्ञान है, ये कोई हिंदू और उसकी किताब नहीं होती, ये साइंस की बुक है। मुझे तो ये लगता है, मुझे तो लगता है साइंस की बुक है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने गीता पढ़ी मुझे तो समझ आया कि जो एटम बम है, एटम बम पता है, जो एटम बम जिसने बनाया था ओपेनहाइमर, उसने गीता को पढ़ के बनाया था, उसको प्रेरणा गीता से पढ़ के मिली थी। अब पता नहीं गीता में दिया है, एटलीस्ट उसके प्रिंसिपल्स दिए होंगे। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी गीता में, आप कहोगे कहाँ है साइंस, कोई साइंस टीचर है, कोई है यहाँ पे नहीं टीचर। आइंस्टाइन की थ्योरी है गीता में, आप कहोगे कहाँ है, आपको नहीं दिखाई देगी, मुझे दिखाई दे रही है। गीता में पूरी की पूरी फिजिक्स है, आपको नहीं दिखाएगी, मुझे दिखाई देगी। गीता में वो ज्ञान है जो आज से 100 साल पहले किसी को पता ही नहीं था, अब पता लग रहा है। और जब मैंने गीता का श्लोक पढ़ा मैंने कहा लो अब ये ढूंढ रहे हैं, और भगवान ने पहले ही बोल दिया। भगवान जो बोलते हैं उसका एक मतलब नहीं होता, उसके 1000 मतलब होते हैं, हम तो एक ही मतलब समझते हैं, मगर हम जब बोलते हैं तो उसका एक मतलब होता है। नहीं, भगवान बोलेंगे तो उसके कई डायमेंशन होंगे, डायमेंशन समझते हो, डायमेंशन क्या कहते हैं, कई स्तर होंगे, एक बात से कई बात बोलते हैं भगवान, इसीलिए शास्त्रों को कल्पतरु बोला जाता है। आप जिस दृष्टि से शास्त्र पढ़ोगे वही दिखाई देने लगेगा। अगर हम भोगी हैं, अगर हम नास्तिक हैं और हम गीता पढ़ेंगे तो हमारा गीता पढ़ के निष्कर्ष क्या आएगा, देखो कर्म करो फल की चिंता मत करो, करते रहो कर्म, उसको यही दिखाई देगा पूरी गीता में। मैं एक राम कथा में गया था तो उसमें बता रहे थे हरिद्वार में, तो मेरे साथ मेरी दादी भी थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, तो पूरी राम कथा हो गई। फिर वो हम वापस आ रहे थे घर, तो मैंने दादी से पूछा कि हाँ ठीक है क्या क्या राम कथा हुई, तो वो मुझसे कहते देखो तुमने सुना नहीं, महाराज जी कह रहे थे कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैंने कहा यार ना राम की बात कर रहे हैं, सीता की बात कर रहे हैं, कर्ण की बात आ कहां से गई यहां पर, उसको वही सुनाई दे रहा है उसमें। तो जैसा जैसी दृष्टि वैसी वैसी वो गीता में आपको ही नजर आएगा। इसलिए आर्मी वाले भी गीता पढ़ाते हैं, पता है आजकल आर्मी में बुलाते हैं, हमें बुला रहे थे आर्मी वाले, गीता पढ़ाओ। हमने कहा क्यों, कहते हैं देखो जवानों को उत्साह मिलेगा लड़ने का, जिस तरह अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं उसी तरह हमारे जवान भी लड़ाई करेंगे, ये ठीक है। ये बिल्कुल बेवकूफी है, गीता लड़ाई कराने के लिए नहीं बोली है कि उसको उत्साह है लड़ाई करने का, ये संदेश ही नहीं गीता का। गीता का तो लड़ाई तो बहाना था गीता बोलने का, वो बात अलग थी। भगवान ने लड़ाई के बीच में गीता बोली, क्योंकि अगर भगवान अर्जुन को खाना खाते वक्त गीता बोलते तो आज गीता की कोई महत्वपूर्णता ही नहीं रह जाती। नहीं, दो 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 जनों में बात हो गई खाना खाते वक्त, युद्ध के बीच में कुछ बोला गया तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। जब भगवान ने गीता बोलनी शुरू की युद्ध के बीच में, तो देवता भी आ गए कि जरूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात हो रही होगी, क्योंकि युद्ध को रोक के कौन बोलता है कुछ, वो भी युद्ध के बीच में। अब वो भी भगवान युद्ध के बीच में आत्मज्ञान दे रहे हैं, हम तो यहाँ पे आत्मज्ञान प्रोग्राम करके दे रहे हैं, इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर युद्ध के बीच में दूंगा तो हर बात समझ आएगी। क्यों? क्योंकि युद्ध में क्या है, या तो मरना है या जीना है। तो भैया अब मरना पड़ेगा, उससे पहले सीख लो। नहीं अभी तो, अभी आपको भूख नहीं है गीता समझने की, नहीं इसलिए आपको समझ नहीं आएगी ज्यादा। मैं बोल तो रहा हूं मगर समझना मुश्किल है, क्योंकि आपको लग रहा है नहीं भी समझेंगे तो क्या हुआ, घर जाके हमारा टीवी है, हमारा एसी है, हमारे चीकू चीकू बच्चे हैं। नहीं, ऐसे ही होता है बच्चों में, बच्चे बस हमारी डार्लिंग है, मैं बोलना भी भूल गया, डार्लिंग या सॉरी, यही लाइफ है, नहीं और क्या है। घूमने चलो, इधर जाओ, गीता में क्या रखा है? गीता थोड़े ना हमें कोई घूमने ले जाएगी, कोई पैसे देगी, ये आपको विचार आ जाएंगे। फिर आपको अगर ठीक है थोड़ा बहुत गीता पढ़ लेंगे, क्या हो गया? क्यों आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा? जो आप कर रहे हो वो हजार गुना मैं ज्यादा करके छोड़ भी चुका हूं। बिल्कुल बेवकूफों वाली जिंदगी है, मुझे पता है ये सब जान, ये पागलपंती है, कुछ नहीं रखा इसमें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि आप जितना जितना सुख लेना चाहोगे उतना दुखी होगे, उतना उतना टेंशन में आ जाओगे। देखना जितना संसार में घुसोगे उतना टेंशन में आओगे, ये 100% है, आप करके देख लो। नहीं मेरी बात मानोगे आप करोगे, बाद में मेरे पास ही आओगे, ये बाद में आप कहोगे भैया कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ऐसे जीवन। इसलिए आप बूढ़े लोगों से पूछो, दिल्ली में बूढ़े लोग मिलते हैं, पूछते हैं उनसे तो पता क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं यार अब मर जाए बस बहुत हो गया, ये कहते हैं नहीं भगवान उठा ले बस। सुनना तो वो परेशान होते हैं, ठीक है रिश्तेदारों के लिए किया वो भी कुछ नहीं है, बस सुनते। बच्चे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो मेरी बहू है वो तो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसे ही चलता है। यहाँ बड़ा चुना कहते हैं नू, कहते हैं ना नू, हाँ मुझे एक औरत कह रही थी मेरी नू तो ऐसे ही है, बस भगवान उठा ले। परेशान है वो, उसने उसने कितनी कितने शौक से नू लाई होगी, पता नहीं नू क्यों बोलते हैं, आई थिंक न्यू से आता होगा, न्यू न्यू कोई घर में मेंबर आ गया, नू आ गया। कितने शौक से शादी करेगी बच्चे की, खुशी थी नहीं मगर उसके साथ कितनी, बाद में उसको समझ आया भैया ये तो सर पे बैठ गई प्रॉब्लम। सो हर जगह प्रॉब्लम है, नहीं सो मैं यही बता रहा था, ये सब करके आप मत ज्यादा इसमें फंसो, मेरी बात सुनो। क्योंकि जहां आप हो वहां मैं आज से 18 साल पहले था, जिस स्थिति में आप हो और जहां जाने की कोशिश कर रहे हो वो सब हम छोड़ के वापस भी आ गए, कब का छोड़ दिया हमने। सो मगर जब हमने गीता पढ़ी तब हमें समझ आया यस ये असली ज्ञान है। अब तब हमें भूख लगी, कुछ जानना है जीवन में, ऐसी जीवन नहीं बितानी है बेकार में खा पी के सो सा के, ये कोई जीवन है? कोई चरित्र नहीं, कोई अच्छे विचार नहीं मन में, सब उल्टा फुल्टा सोचते रहो, कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में, तो नर्क जाने की जरूरत नहीं है, नर्क हमारे मन में ही है अभी, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति नहीं करता वो नर्क जाता है, वो नर्क में ही रह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि नर्क उसके मन में आ जाएगा। जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह द्वेष है उसके मन में ही नर्क है, बस सीधा। तुम नर्क में तो जी रहे हैं, जहां मन है वहां हम है, हम नर्क में अभी। अगर नर्क में रहने का शौक है तो असली नर्क में चले जाओगे। सो इसीलिए गीता पढ़ने की भूख बढ़ाओ, यस मुझे समझना है। और वो कैसे आएगी? वो ऐसी आएगी, गीता पढ़ने की भूख कैसे आएगी? गीता पढ़ने से आएगी। अगर आपको टेस्टी चीज खाओगे, कुछ स्वादिष्ट चीज खाओगे तो भूख लगने लगेगी नहीं, उसको खाने का मन करेगा, उसको खाके ही खाने का मन करेगा, नहीं बिना खाए नहीं मन करेगा उसको खाने का। उसी प्रकार अगर आप गीता को पढ़ने की भूख लाना चाहते हो तो गीता पढ़ के ही वो भूख आएगी, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर भगवान का नाम लेने की इच्छा रखते हो तो भगवान का नाम लेके ही और भगवान का नाम लेने का मन करेगा। सिर्फ सुनने से आप नहीं कर पाओगे, अगर मेरी बात सुन के आप छोड़ दोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तो ले रहा हूं, मुझे पता है। आप नहीं लोगे, सुनोगे तो नहीं समझ आएगा। इसलिए कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं अर्जुन, या वो तो श्लोक छूट ही गया, कि अर्जुन ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं बता रहा हूं, मैं विज्ञान भी बता रहा हूं। सातवें अध्याय के, सॉरी नौवें अध्याय के पहले श्लोक में, तो मैं सिर्फ ये बता नहीं रहा हूं, मैं ये भी समझा रहा हूं कि इसको जीवन में लगाना कैसे, ये भी बता रहा हूं मैं। तो आज आपके बच्चे का बर्थडे है, नहीं मगर असली जन्म क्या होता है? असली जन्म नहीं हुआ उसका, और ना ही आप सबका हुआ है। शास्त्रों में असली जन्म क्या होता है? द्विज, द्विज कहते हैं। नहीं, असली जन्म मां के गर्भ से नहीं होता, असली जन्म ज्ञान से होता है, समझे? वो असली जन्म है। जब गीता का ज्ञान मन में जाएगा तब आपका दूसरा जन्म होगा, ये आपको दिखाई देने लगेगी, दुनिया अलग दिखाई देगी, वो दूसरे जीवन है, उसको द्विज कहते हैं, द्विज, वो द्विज है। वरना शास्त्र उसको जन्म नहीं मानते, माँ के गर्भ से जन्म को कोई जन्म नहीं मानता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो जिसने माँ का गर्भ से जन्म लिया है, मगर जिसने गीता का ज्ञान नहीं लिया, वो शास्त्र योनित्वत, ये वेदांत सूत्र में लिखा है, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया मगर शास्त्रों के गर्भ से जन्म नहीं लिया, शास्त्रों गर्भ मतलब शास्त्रों ज्ञान, उसको मरा हुआ मानता है शास्त्र, एक दृष्टि, एक दृष्टि। तो हम सब यहाँ पे अभी हमने जन्म नहीं लिया है एक्चुअली, तो असली जन्म लेना है तो पढ़ो गीता, समझो, भगवान का नाम लो, तब वो असली जन्म है, क्योंकि तब हमारा संबंध भगवान से हो जाएगा। आपको नहीं भी समझ आ रहा तो चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गीता अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा, अगर समझने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करना और समझना भगवान की दृष्टि में एक ही है, एक ही है। अगर आपका भगवान के नाम में मन नहीं भी लग रहा तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारा हो सकता है नहीं मन लगे, मगर अगर हम निष्कपट भाव से भगवान का नाम लेना चाहते हैं, रोज लेंगे, तो भगवान का मन हम पे आने लगेगा, यहाँ ये चलो ये कर तो रहा है कुछ सही से। सो हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है भगवान पे, भगवान का ध्यान हम पे आएगा अगर हम भगवान की बात मानना शुरू कर देंगे तो। बस अगर बच्चा अपने माता पिता की बात मानता है तो माता पिता का पूरा ध्यान उस पर होता है। जब बच्चा नहीं मानता, माता पिता कहते हैं ठीक है जाओ, जो करना करो, क्या कर सकते हैं, अपने आप माता पिता उसका ध्यान रखते हैं, तो बस ये करना है, सिंपल सी बात है, और क्या। सो या मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सबसे कि प्लीज जिसके पास गीता नहीं है गीता खरीद लो, पीछे गीता है, ये वाली गीता ले लो, क्योंकि आपके पास गीता प्रेस की गीता होगी मगर उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसमें केवल हिंदी होती है, समझाया भी नहीं होता, मगर जैसे मैंने आपको समझाया वो सब इस गीता में लिखा हुआ है, व्याख्या भी है। तो एक श्लोक पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो, उसकी व्याख्या पढ़ो, फिर और शास्त्रों के श्लोक हैं, सारे शास्त्रों का संदेश एक ही है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब एक ही चीज कह रही है। नहीं, एक ही चीज तो कहेगी और क्या कहेगी, हम भी तो सब एक ही हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू, सबके अंदर खून ही तो है, और क्या है, वही दिमाग है, वही हृदय है, वही काम करो दो में, और क्या है। विज्ञान एक ही होता है, एक जमा एक दो ही होता है सबके लिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सबके लिए, उसी प्रकार ज्ञान सबके लिए एक ही होता है। वो तो मानव बनाते हैं, वो तो हम लड़ते हैं, उसका धर्म, इसका धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म, वो बेवकूफ लोग लड़ते हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि पवित्रम ही तदुत्तमम, अर्जुन ये मैं धर्म नहीं बता रहा हूं, ये ज्ञान बता रहा हूं, जिससे तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। इसको समझो, इसको साइंस के रूप में लो, इसको विज्ञान के रूप में लो, और प्रश्न पूछो और उसके उत्तर है। तो गीता ले लीजिए पीछे से, ये वाली पढ़िए, ज्यादा कोई महंगी भी नहीं है। हम लोग जूते खरीद लेते हैं 3000 रुपए के, नहीं आते हैं 3000 के, रिबॉक शूज, अब तो और भी महंगे आते होंगे। वेल, औरतें साड़ियां खरीदती हैं 6000 की, 10000 की, या मैंने दिल्ली में देखा था, एक औरत अपने पति से लड़ रही थी, पूरे सोसाइटी में आवाज आ रही थी, बर्तनों की आवाज। फिर मैं ऊपर गया, मैंने देखा तो वो क्यों लड़ रही है कि आप मुझे, क्या मुझे साड़ी दिलाओ 10000 की। तो पति वो कह रहा था, वो लड़ रहा था, यार इतनी मुश्किल से 10000 कमाता हूं, तू ऐसी साड़ी पे फूंक देगी। तो खैर आपको पता ही है, अब देना तो पड़ेगा ही, 10000 एक सेकंड में फूंक गए। 10000 की साड़ी खरीद सकते हैं, तो एक गीता भी खरीद सकते हैं, इतनी महंगी नहीं है ये, क्योंकि उसका तो मूल्य है, वो तो खत्म हो जाएगी, मगर ये कभी अमूल्य, अमूल्य। सो लेके पढ़ो, धीरे धीरे भगवान की कृपा से समझ आएगी। और ये जो भगवान का नाम है हरे कृष्णा मंत्र, ये जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सुबह आपको 15-20 मिनट ही लगाने हैं, उससे ज्यादा भी, शुरुआत में तो ऐसे ही है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान अपने आप प्रेरणा देंगे और करने के। हरे कृष्णा, दैट्स इट।